नमस्कार भारत, बुधवार 8 मार्च, मैं हूं निखिल रंजन। लखनऊ में चल रहा मुठभेड़ खत्म, एक संदिग्ध की मौत। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आज अंतिम दौर का मतदान, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग। इन चुनावों में कोई क्यों नहीं पूछता जरूरी सवाल?
ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बन पाता है इसलिए कि वोट की लालच के कारण। बनारस अति प्राचीन शहर है, उस समय के प्लानिंग के हिसाब से रोड की गलियों की चौड़ाई है।
विकिलीक्स ने जारी किए लाखों दस्तावेज, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साइबर हथियारों के भंडाफोड़ का दावा। महिला दिवस के मौके पर याद करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीका जी कामा को।
वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स की आप बात करिए तो आपको उनका नाम मिल जाएगा, नेहरू जी की पत्नी का मिल जाएगा।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
BBC समाचार, मानसी दास से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक संदिग्ध चरमपंथी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जो तड़के 3 बजे संदिग्ध की मौत के साथ खत्म हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने संदिग्ध के पास से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और एक चाकू बरामद करने का दावा किया है। विकिलीक्स ने इंटरनेट पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के हैकिंग उपकरणों यानी साइबर हथियारों से संबंधित जानकारी छापी है। विकिलीक्स का दावा है कि इनमें ऐसे मैलवेयर शामिल हैं जो इंटरनेट राउटरों, कंप्यूटरों, मोबाइल फोन, स्मार्ट TV को निशाना बनाते हैं। CIA के प्रवक्ता ने इन खुफिया दस्तावेजों की सत्यता पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। विकिलीक्स ने यह भी दावा किया है कि गाड़ियों के कंप्यूटर नियंत्रण सिस्टम को भी प्रभावित करने के तरीके तलाशने की कोशिश की गई थी। तुर्की के विदेश मंत्री मेलबू चेवेशवालू ने जर्मनी में एक सभा में तुर्कों को संबोधित करते हुए कहा है कि यूरोप को विदेशी लोगों और इस्लाम पसंद करने और नस्लवाद की बड़ी समस्याएं हैं। चेवेशवालू जर्मनी में आयोजित एक सभा में बोल रहे थे जो देश में तुर्क नेताओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के विरोध में आयोजित की गई थी। अप्रैल में तुर्की के संविधान में अहम बदलाव लाने संबंधी जनमत संग्रह कराया जाने वाला है, जिसमें जर्मनी में रहने वाले लाखों तुर्क भी वोट दे सकते हैं। इसी सिलसिले में तुर्क नेता जर्मनी में रैलियों में शिरकत कर रहे थे, जिन पर जर्मनी ने रोक लगा दी थी। मेवलू चेवेशवालू ने कहा,
hem vatandaşlığa kabul etmeyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bizim buluşmamız,
आप उन्हें नागरिकता नहीं देते और आप हमें हमारे ही तुर्की नागरिकों से मिलने से रोक रहे हैं। क्या ये मानवता की नज़र से सही है? क्या ये गणतंत्र और मानव अधिकारों के हिसाब से ठीक है? क्या ये लोगों के मिलने के अधिकार की नज़र से सही है? आप कृपया हमें गणतंत्र और मानव अधिकारों का पाठ ना पढ़ाएं, आप पहले अपने आप को देखें। ये थे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलू चेवेशवालू के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका चीन को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि दक्षिण कोरिया में विवादित मिसाइल रक्षा प्रणाली THAAD की तैनाती से चीन को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले चीन ने मिसाइल प्रणाली की तैनाती का विरोध किया था और कहा था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा है कि इस प्रणाली को उत्तर कोरिया से होने वाले हमले से बचने के लिए लगाया गया है। उत्तर कोरिया ने इसी सप्ताह कई मिसाइल छोड़े थे जो जापान सागर में गिरे थे। मार्क टोनर ने कहा, हम दक्षिण कोरिया में THAAD लगाना चाहते हैं क्योंकि उत्तर कोरिया का यूं कहें गैर जिम्मेदाराना बर्ताव जारी है। वो अपने परीक्षण करते जा रहे हैं और जिससे प्रायद्वीप की और इस इलाके की स्थिरता को खतरा है। साथ ही ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हम चीन के साथ स्पष्ट बात कर रहे हैं कि इससे उन्हें या इलाके की किसी और शक्ति को कोई खतरा नहीं है। ये बचाव प्रणाली है और उत्तर कोरिया की उत्तेजक हरकतों के जवाब में है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर के शब्द। अमरीका के मिसिसिपी में एक मालगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर फंसे एक बस से टकरा गई है। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि जब ट्रेन बस से टकराई उस वक्त लोग बस से उतरने की कोशिश कर रहे थे। बिलोक्सी शहर के अधिकारियों का कहना है कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। हाल ही में हुए हादसे में अपनी लगभग पूरी टीम खो चुकी ब्राजील की चापेकोंसी रियल फुटबॉल टीम हादसे के बाद आज पहली बार मैदान में उतरने जा रही है। दक्षिण अमेरिका के एक स्थानीय टूर्नामेंट में चापेकोंसे रियल वेनेजुएला की जूलिया टीम से भिड़ेगी। BBC समाचार।
नमस्कार भारत, BBC रेडियो पर बुधवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, लखनऊ में मंगलवार दोपहर शुरू हुई मुठभेड़ तड़के सुबह करीब 3 बजे एक संदिग्ध की मौत के साथ खत्म हो गई। पुलिस ने संदिग्ध को जिंदा पकड़ने की तमाम कोशिश की, मिर्ची बम और कैमरों का इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुठभेड़ के दौरान एक बार ये भी खबर आई कि 2 संदिग्ध छिपे हो सकते हैं, लेकिन बाद में एक ही शव मिला। मरने वाले का नाम पुलिस के मुताबिक सैफुल है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में एक बम धमाके के साथ हुई। इसके बाद खुफिया सूत्रों के तार पहले उत्तर प्रदेश, कानपुर और फिर लखनऊ के ठाकुरगंज तक पहुंच गए। कैसे क्या हुआ ये बताने के लिए समीर आत्मज मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समीर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताइए कि ये मुठभेड़ जो है वो खत्म हुई है, उसके बाद पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं?
जी निखिल, जैसा आपने बताया कि 3 बजे के करीब लगभग 11 घंटे लंबी ये मुठभेड़ चली है और पुलिस अधिकारी जो ATS ने ये पूरा जो अभियान था इसको चला रखा था। जैसे ही मुठभेड़ खत्म हुई उसके कुछ देर के बाद इसकी पुष्टि की ATS के IG असीम अरुण ने, और उन्होंने ही बताया कि उस समय एक ही चरमपंथी था, एक ही संदिग्ध था जिसकी मौत हो गई मुठभेड़ में। क्या कहा IG ATS असीम अरुण ने, आप सुनिए।
फायर किया ATS कमांडोज के ऊपर और उसके प्रत्युत्तर में हम लोगों ने भी फायर किया। इसके बाद में पूरे इलाके को प्रॉपरली चेक किया गया, दोनों कमरों को, और यहाँ पे सैफुल्ला नाम का व्यक्ति जिसको कि पहचाना गया है वो मिला है और वो डेड है। ये इस ऑपरेशन में ATS, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सभी लोग शामिल रहे। बहुत संयम का प्रयोग किया गया, हमने भरपूर कोशिश की कि हम इसको जिंदा पकड़ पाते, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। बट एनीवे हम लोग संतुष्ट हैं कि किसी भी सिविलियन को, किसी भी पुलिस वाले को इसमें कोई इंजरी नहीं हुई है और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन समाप्त हो पाया।
तो निखिल, ये थे IG ATS असीम अरुण और इन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो है ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि देर रात इस तरह की भी खबरें आई थी, चूंकि पुलिस ने और ATS ने जिस जगह पे ये संदिग्ध छिपे हुए थे वहां पे उन्होंने छत पर पहुंच करके और उसको ड्रिल मशीन से उसको उसमें छेद किया और कैमरे लगा कर देखे। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG लाइन एंड ऑर्डर है दलजीत चौधरी, उनका बयान आया कि वहां 2 संदिग्ध छिपे हुए हैं। लेकिन बाद में फिर ये बात आई कि नहीं, संदिग्ध एक ही है। और लगातार जब पुलिस वालों की ओर से, ATS के कमांडोज की ओर से गोलीबारी हो रही थी तो जवाब में उधर से भी फायरिंग हो रही थी। बड़ा सा ये घर था जिसमें 8-10 कमरे हैं जहां पे ये संदिग्ध छिपे हुए थे और आखिरकार ये ऑपरेशन संपन्न हुआ। एकमात्र जो संदिग्ध था उसकी मौत हो गई है और अभी बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। दिन में शायद ATS के IG ने ही बताया हमको ये जानकारी दी कि दिन में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम और बातों की, इनके किससे जुड़ने की आशंका है, किन मामलों में ये व्यक्ति जुड़ा हो सकता है सैफुल्ला जिसकी मौत हुई है इस ऑपरेशन के दौरान
जी,
ये सब जानकारी शायद ये दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दें।
बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में आज 40 सीटों पर मतदान होगा। वाराणसी, गाजीपुर समेत कुल 7 जिलों में वोटिंग होनी है। पूर्वांचल में बढ़त बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कई रैलियां की। बड़े नेताओं पर केंद्रित प्रचार के दौरान अहम मुद्दे, जरूरी मुद्दे पीछे छूटते दिखे। BBC संवाददाता विनीत खरे ने वाराणसी के वोटरों से बात की और यही जानने की कोशिश की कि शहर की बदहाल सड़कें और लचर ट्रैफिक व्यवस्था जैसे जो आम मुद्दे हैं वो चर्चा में क्यों नहीं आ सके।
हम इस वक्त हैं बनारस के गदौलिया में और हम इस वक्त दुकान में है संतोष तामुल भंडार, हमारे साथ कुछ लोग हैं। दादू, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम सुरेश है।
सुरेश जी बताइए, बनारस की सड़कें जो हैं इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों है, यहाँ चलना इतना मुश्किल क्यों है,
क्या हम इसके बारे में बताएं?
तो बनारसी है ना।
हाँ, ठीक है। यहाँ तो ट्रैफिक यहाँ बहुत जाम है, बहुत दुर्दशा है, पैदल चलने वालों की मुसीबत है, क्या करें।
लेकिन एक चीज बताइए, जब मैं यहाँ पे चुनाव के बारे में देख रहा हूँ इसका कहीं जिक्र नहीं है, कोई इस बारे में नहीं बात कर रहा कि ऐसा क्यों है।
अब ऐसा तो माहौल के ऊपर है, अब ऐसा हम क्या बता सकते हैं, उसमें अभी माहौल है, जिसकी तरफ जाए वो बता सकता है उनको।
खैर बता दें कि ये छोटी सी सड़क है और आने वाले और जाने वालों की बिल्कुल भीड़ लगी हुई है। बड़े बड़े ट्रक हों या छोटे छोटे ऑटोज वो निकल रहे हैं। बताइए यहाँ पर ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है, ये जो ट्रैफिक है दो दो घंटा तीन तीन घंटा लग जाता है।
मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा ये नहीं बन पाता है इसलिए कि वोट की लालच के कारण। बनारस अति प्राचीन शहर है, सैकड़ों साल पुराना शहर है, उस समय के प्लानिंग के हिसाब से रोड की गलियों की चौड़ाई है। आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कई गुना ज़्यादा हो गए हैं, उसके कारण दिन भर मैक्सिमम टाइम रश रहता है, भीड़ रहती है।
क्या बनारसी आदि हो गए हैं, फर्क भी नहीं पड़ता,
लगभग आदि हो गए हैं।
आपने नेताओं से अपने लोगों से मांग क्यों नहीं करते कि भाई इसका कुछ हो?
नहीं, मांग
कोई फ्लाईओवर नहीं है।
नहीं, मांग होता, फ्लाईओवर है, बन रहे हैं, उधर टैंक की तरफ है, पांडेपुर की तरफ है,
तो गाड़ी कोई आना नहीं चाहता यहाँ पे, कोई घुसना नहीं चाहता।
इस समय जो आप यहाँ खड़े हैं, हार्ट ऑफ द सिटी, ये सबसे प्राचीन इलाकाओं में से है, तो यहाँ रोड कंजस्टेड है और पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, इसलिए 24 आवर्स में 16 आवर्स जाम रहते हैं।
तो ये क्या होना चाहिए भाई, ये जो ट्रैफिक का हेडेक है इससे कैसे निपटा जाए?
देखिए ऐसा इस तरह निपटा जाए कि जैसे वन वे रोड हो जाए, इसलिए हो सकता है, नहीं तो और तो कोई विकल्प हम लोग नहीं समझ में आता।
चौड़ा वड़ा नहीं होना है कि सड़क?
चौड़ा तो होगा, अभी नहीं तो इलेक्शन बाद होगा, चौड़ा तो होगा, रोड तो चौड़ा होना ही है।
जी
चौड़ीकरण की प्लानिंग है, लेकिन वोट राजनीति के कारण अगर प्रशासन टाइट भी होता है तो फिर नेता लोग या कोई ना कोई चुनाव आ जाता है तो मामला रुक जाता है। और वो
मैं ये चुनाव देख रहा हूँ, यहाँ सिर्फ चेहरे के नाम पर बात हो रही है, ये चेहरा वो चेहरा, अरे सड़क का क्या होगा, सड़क में गाड़ी चलना मुश्किल है, इस पर आप लोग क्यों नहीं बात करते? आप लोग का तो डेली का ये सरदर्द है।
सरदर्द है लेकिन जो जिसे हम कह रहे हैं सरदर्द है, तो जो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी उसमें तो मैं ही विरोध करूंगा, बट नेचुरल है, तो इसलिए बहुत तो
बनारसी जो है सफर नहीं करना चाहते
नहीं,
क्या?
सफर अभी अगर 10 फीट इधर जाएगा 10 फीट उधर जाएगा तो सबका मकान टूटेगा, तो ये सब प्रॉब्लम
लोग सहते रहते हैं चुपचाप।
हाँ, लोकल राजनीति,
बट मेन प्रॉब्लम यही
है,
मेन प्रॉब्लम
लगता है कि अगर चौड़ा हुआ तो हम भी मारे जाएंगे इसके अंदर।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चला जाएगा 10 फुट ना, मेरा तो 10 फुट चौड़े में तो चला जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी चौड़ा तो हो जाएगा तो, और अब पब्लिक को तो थोड़ा आराम हो जाएगा, लगे हम लोग का भी तो नुकसान होगा, वैसे चौड़ा होने वाला है ही है।
वाराणसी में विनीत खरे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनीत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि आपने चुनाव को काफ़ी करीब से देखा, वहाँ पर सातवें जो अंतिम चरण का चुनाव था उसमें आप वाराणसी में थे, इस दौर में जो चुनाव होना है उसमें किन चेहरों की बात हो रही है, कौन से बड़े अहम चेहरे हैं और किन सीटों की चर्चा हो रही है?
अपने वाराणसी का एक चेहरा थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन दूसरा चेहरा मैं बता दूं, यहाँ मैं 80 घाट में हूँ और जो बनारस जिस चीज़ के लिए फेमस है, भजन गाया जा रहा है, सूरज थोड़ा सा चढ़ा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लोग यहाँ पर भजन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, चाय की दुकान से मैं पास हो रहा था, पुराने मोहम्मद रफ़ी के गाने चल रहे थे, तो बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। चुनाव की बात की आपने, सबसे जो मुख्य जो सबकी नज़र होगी वो बनारस पे होगी निखिल। 8 सीटें हैं यहाँ पर, नरेंद्र मोदी 3 दिन यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, तो इन आठ सीटों में क्या होता है? उसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा हो गए या फिर महेंद्र नाथ पांडे हो गए, उनकी जो चंदौली इलाका है, राजनाथ सिंह का जो गृह जनपद है उस पर निगाह होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा कि भाई ये जो 3 दिन गुजारे हैं यहाँ पर बनारस में, चाहे वो बनारस शहर की 3 सीटें हों या फिर सेवापुरी का इलाका हो जहाँ पर जयापुर विलेज है जिसे नरेंद्र मोदी ने अडाप्ट किया था, वहाँ पर क्या होता है, रोहनिया का इलाका हो जो अपना दल का एक तरह से कर्म क्षेत्र है, जिसके साथ अपना दल के एक फैक्शन के साथ, अनुप्रिया पटेल के फैक्शन के साथ नरेंद्र मोदी के बीजेपी के टाइप है, तो ये सब जो सीटें हैं, 40 सीटों के लिए आज चुनाव है, करीब 1.5 करोड़ लोग वोट करेंगे, करीब 14,000 मतदान केंद्रों में और 500 से ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं।
विनीत, एक अहम सवाल ये है कि जो वाराणसी की सीटें हैं वो तो हैं ही, और वाराणसी खास तौर से बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहम है, लेकिन जो दूसरे दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन सब दलों का क्या कुछ दांव पर है इस चरण के चुनाव में?
देखिए एटलीस्ट मैं जितना घूमा हूँ यहाँ पर, ये देखिए सुन रहे होंगे आप, तो ये चेहरों की लड़ाई है यहाँ पर, और मुख्य मुकाबला बीएसपी की यहाँ मैं जैसे हूँ बनारस में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन एक तरफ और नरेंद्र मोदी का गठबंधन एक तरफ, और एक जो बहुत ही स्टार्क चीज़ें हैं कि इश्यूज़ की कोई बात नहीं कर रहा, चेहरे के नाम पर वोटिंग हो रही है कि मोदी के नाम पर क्यों वोट होगा या फिर अखिलेश के नाम पर वोटिंग होगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर उन पर बात ज़्यादा नहीं हो रही है।
बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। चुनाव की बयार जो है वो मणिपुर में भी चल रही है, जहां आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। मणिपुर में आज विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 22 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। बीते कुछ दिनों से बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली मणिपुर में ही हैं। आइए पता करें कि मणिपुर किन मुद्दों पर वोट डाल रहा है। फैसल साहब स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि ये जो आज जो चुनाव हो रहा है, जो दूसरे चरण का चुनाव है, उसमें कौन से चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है?
कई चेहरे हैं, जाहिर है जैसा आपने बोला कि एक तो सबसे बड़ा चेहरा जो है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, ओग्राम इबोबी सिंह की बात कर रहा हूँ। और अगर कांग्रेस के बारे में कहें तो जो रीजनल सत्रफ जिनको कहा जाता है एक तरह से, वो उनमें से एक है। उनके बारे में बड़े किस्से मशहूर हैं। आजकल कई चुनाव में गए तो उन्होंने ये कहा कि ये ना तो असम है ना अरुणाचल है, ये मणिपुर है, मैं फिर से वापस आऊंगा। हालांकि उनके खिलाफ एक तरह से 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो है सत्ता विरोधी भावना है यहाँ, लेकिन वो कई मामलों की वजह से थोड़ी मध्यम पर गई है बाद में। अब उनके बारे में किस्से मशहूर है कि जब जाते हैं वो कांग्रेस की बैठक में तो उनके लिए आगे की सीट मुकर्रर होती है, लेकिन वो बैठ जाते हैं पीछे, तो बड़ा लो प्रोफाइल रहता है। और आप अगर देखें तो शीला दीक्षित चली गई और उसके बाद असम में, लेकिन वो जो है अभी तक बने हुए हैं। तो उनकी जो थौबाल सीट है वहां से वो मैदान में है इस बार भी, और उनके उनके अगेंस्ट में जो खड़ी हुई है वो इरूम शर्मिला है जो 16 सालों तक रही, लेकिन उनकी मुख्य टक्कर जो है वो मुख्यतः बीजेपी से है वहां। और उसके बाद जो बाकी लोगों की बात करें अगर आप, तो स्वर्ड वासुन जो है एक एनएससीएन लीडर, उनके भाई हैं चुनाव मैदान में। और उसके बाद फ्रांसिस नगोजोप्पा जो हैं, जो तादुबी सीट से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं।
फैसल साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वहाँ के चुनाव के जो रंग दिखते हैं, किस तरह से कैंपेनिंग होती है, और जो उत्तर भारत में या भारत के दूसरे हिस्सों में कैंपेनिंग होती है, उसमें कुछ फर्क देख रहे हैं आप? किस तरह के नज़ारे वहाँ आमतौर पर दिख रहे हैं? कैसे नेता किस तरह से संपर्क कर रहे हैं अपने वोटरों से? क्या कुछ देखा आपने चुनाव प्रचार के दौरान?
देखिए, चुनाव प्रचार में एक तो सभाएं होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो सबसे अहम बात जो मुझे दिखी और जो मैंने उतरने के बाद ही महसूस किया कि तो यहाँ की आम जिंदगी में भी औरतों का बड़ा दखल होता है कि आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आ जाता है कि पार्किंग अटेंडेंट जो है वो औरतें ही खड़ी हुई हैं, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है। तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के जो चुनाव के बूथ जो लगेंगे एजेंटों के, उसमें औरतें बहुत ही प्रोमिनेंटली और बड़ी तादाद में रहती हैं, नहीं कि कद-दुका कोई पॉलिटिकल जो है, और उनका पार्टिसिपेशन काफी बढ़ के रहता है, बड़ा कलरफुल रहता है, बिल्कुल तैयार होके एक अच्छी तरह से औरतें आती हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज है कि वो शोर शराबा उस तरह का नहीं है, एक छोटा सा स्टेट है। अब आप ये देखिए कि दूसरा जो चरण है उसमें कुल मिला के 98 कैंडिडेट ही है, लेकिन उस 98 में 4 जो है महिलाएं हैं, और पहले वाला जो था उसमें भी जो 168 में जो थे पहला चरण जो हुआ उसमें भी 7 महिलाएं थी, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन
जी जी अच्छा है। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। समय कम है, आपसे शाम के कार्यक्रम में फिर बात होगी, तब तक आप शायद वोटिंग भी देख चुके होंगे। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। खुफिया सूत्रों के हवाले से गुप्त जानकारियां इंटरनेट पर पोस्ट करने वाले वेबसाइट विकीलीक्स ने कुछ ऐसी जानकारियां छापी हैं जिनमें खुफिया एजेंसी CIA की हैकिंग के उपकरणों का ब्यौरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विकीलीक्स ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उसके मुताबिक CIA टीवी सेट से लेकर मोबाइल फोन तक अपनी घुसपैठ बना चुकी है और उनका इस्तेमाल जासूसी करने में की जा रही है। मानसी दास से सुनिए पूरा ब्यौरा।
विकीलीक्स ने इंटरनेट में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के हैकिंग उपकरणों से संबंधित सैकड़ों दस्तावेज पोस्ट किए हैं। शायद ये कुछ साल पहले एडवर्ड स्नोडेन के किए लीक्स के बाद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इन कथित साइबर हथियारों के बारे में कहा गया है कि इनमें वो वायरस भी शामिल हैं जो विंडोज, एंड्रॉयड और iOS, OSX और लिनक्स कंप्यूटरों को निशाना बनाते हैं, साथ ही इंटरनेट राउटरों को भी। CIA के प्रवक्ता ने इन ब्यौरों की पुष्टि नहीं की है। ब्रिटेन के गृह विभाग के प्रवक्ता ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका की साइबर क्षमताओं के बारे में बताने वाले विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने कहा कि ये आरोप सही जान पड़ते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इसमें कार्यक्रमों और दफ्तरों के नाम हैं, कुछ क्रिप्ट सीरीज की जानकारी है जो केवल उसी को पता होगी जो उस पर काम करता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। विकिलीक्स ने बड़ा काम किया है, दस्तावेज सही जान पड़ते हैं। विकिलीक्स ने दावा किया है कि CIA की विशेष शाखा बनाई गई थी ताकि आईफोन और आईपैड्स को निशाना बनाया जा सके। एजेंसी की कोशिश इनकी लोकेशन का पता लगाना, डिवाइस के कैमरे और माइक्रोफोन को एक्टिवेट करना और टेक्स्ट में होने वाली बातचीत को पढ़ना था। एडवर्ड स्नोडन के किए खुलासों के बाद उनके समर्थन में आए लोगों के द्वारा तैयार किए वेबसाइट इंटरसेप्ट के संपादक ग्लेन ग्रीनवॉल्ड का कहना है,
WikiLeaks has an excellent history historically of publishing genuine documents. The Wall Street Journal is reporting. Their sources have said that the documents are authentic.
WikiLeaks का इतिहास रहा है कि उन्होंने सही दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि उनके सूत्रों के अनुसार दस्तावेज सही हैं। एडवर्ड स्नोडन और अन्य विशेषज्ञ भी लीक किए दस्तावेजों को पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है ये सच्चे जान पड़ते हैं। मुझे लगता है इनमें दिलचस्प जानकारी है कि किस तरह CIA लोगों के गैजेट में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और इससे CIA का विरोध करने में मदद मिलेगी और इस बारे में फिर से बहस शुरू हो सकेगी कि खुफिया संस्थाओं के हमारी जानकारी के बिना हमारी बातचीत जानने के बारे में हम क्या चाहते हैं। इंटरसेप्ट के संपादक ग्लेन ग्रीनवॉल्ड के शब्द। विकिलीक्स ने यह भी दावा किया है कि सैमसंग की एक खास सीरीज के स्मार्ट टीवी में भी घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और मैलवेयर तैयार किया गया था। इसमें टीवी स्क्रीन के लिए फेक ऑफ मोड रचा गया था जो टीवी इस्तेमाल करने वालों को आभास देता है कि स्क्रीन बंद हो गया है, लेकिन उस वक्त भी टीवी का माइक्रोफोन ऑन रहता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है ताकि ये CIA के कंप्यूटरों तक पहुंचे।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। और अब अखबारों में क्या कुछ छपा है ये जानकारी भी मानसी दास ने आपसे बताएंगी। अखबार लेकर के मानसी आ चुके स्टूडियो में। जी मानसी बताइए।
निखिल जी, शुरुआत करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन्नी के कार्टून से जो है बाबरी विध्वंस मामले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 अन्य नेताओं पर आपराधिक साजिश का मामला चल सकता है। कार्टून में दिख रहे हैं कि आडवाणी झांक रहे हैं खिड़की से और पास ही दीवार पर लिखा है मार्गदर्शक मंडल का बोर्ड। नीचे लिखा है, मस्जिद को गिरे 25 साल हो गए हैं, आपने ना ही मंदिर देखा ना ही इस मंडल को देखा।
ऐसा ही एक कार्टून मुझे यहाँ जनसत्ता पर भी
जी जनसत्ता में भी इरफान का जो कार्टून है इसी मुद्दे पर है। कमरे के फर्श पर आडवाणी बैठे हैं और कह रहे हैं अब भी तो सजा ही काट रहे हैं। एक अखबार मुझे आज गुलाबी रंग में भी रंगा नजर आ रहा है, ये है दैनिक भास्कर की विशेष प्रस्तुति वुमेन भास्कर। वुमेन्स डे पर खास खबरें छापी है अखबार ने। नई दुनिया, हिंदुस्तान और पंजाब केसरी ने भी आज महिलाओं के बारे में खास खबरें छापी हैं। पहली खबर पढ़ती हूँ वुमेन भास्कर से। खबर है कि मणिपुर में 16वीं सदी में बना था एक बाजार जिसका नाम है ईमा बाजार, मतलब है इसका मदर्स मार्केट। ये शायद दुनिया का इकलौता बाजार है जो महिलाएं चलाती हैं। खबर के अनुसार इस बाजार के बसने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि उस दौरान पुरुष चावल की खेती के काम में जाते थे तो घर में महिलाएं अकेली रहती थीं और वही इन बाजार को चलाती थीं।
वाकई महिला खबरों को सलाम। और आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बहुत शुक्रिया मानसी इस पूरी जानकारी के लिए। आपने मैडम बीका जी कामा का नाम शायद सुना होगा, वो लेकिन बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में नहीं जानते। साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा उन्होंने ही फहराया था और ये झंडा फहरा था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। अब देश में कई मार्ग और इमारतें तो मैडम बीका जी कामा के नाम पर है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में जानकारी कम ही लोगों को है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें याद कर रही हैं BBC संवाददाता दिव्या आर्य।
साल 1907, ये वो वक्त था जब 2 साल पहले भारत में बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। महात्मा गांधी अभी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, पर बंटवारे से उमड़े गुस्से में बंगाली हिंदुओं ने स्वदेशी को तरजीह देने के लिए विदेशी कपड़े का बहिष्कार शुरू कर दिया था। बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चैटर्जी की किताब आनंद मठ से निकला गीत बंदे मातरम राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों में लोकप्रिय हो गया था।
वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भीकाजी कामा द्वारा फहराए झंडे पर भी बंदे मातरम लिखा था। ये भारत के आज के झंडे से अलग आजादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थीं। झंडे में हरी पट्टी पर बने 8 कमल के फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना था। सूरज हिंदू धर्म और चांद इस्लाम का प्रतीक था। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले रोहतक MD विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर BD यादव बताते हैं,
मैडम भीकाई जी कामा को जो है स्पॉन्सर्ड किया था फ्रांस के जो सोशलिस्ट है ना समाजवादी, उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया था, तो उनके बिहाफ पे वो वहाँ पे गई थी। वहाँ पे सभी देशों के झंडे थे, जितने भी जो कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे सबके झंडे थे, लेकिन भारत का झंडा नहीं था। भारत का झंडा तो वो ब्रिटिश का झंडा था, यूनियन जैक। तो उन्होंने जो है ना उसी समय एक अपना झंडा बनाया।
जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने भारत का वो झंडा फहराया। और अपनी किताब मैडम भीकाई जी कामा में प्रोफेसर यादव बताते हैं कि उस भाषण में वो बोली,
तो उसमें उन्होंने कहा कि ये संसार के कामरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, ये सभी देशों के साथ ये भारत का झंडा ये मैं फहरा रही हूँ, और ये मतलब भारत देश को रिप्रेजेंट करता है, इसको सलूट करो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं, मिजरी है, स्टारवेशन है, और हमारे देश का शोषण हो रहा है, ब्रिटिश शोषण कर रहे हैं, और इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है हमारी मदद करें।
इसके बाद मैडम कामा ने जिनेवा से बंदे मातरम नाम का क्रांतिकारी जर्नल छापना शुरू किया। इसके मास्ट हेड पर नाम के साथ उसी झंडे की छवि छापी जाती रही जिसे मैडम कामा ने फहराया था। ये झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है, पर इतिहास में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कपिल कुमार के मुताबिक,
देखिए दिक्कत क्या होती है कि विमेन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स की आप बात करिए तो आपको उनका नाम मिल जाएगा, नेहरू जी की पत्नी का मिल जाएगा, इंदिरा गांधी का मिल जाएगा, सरोजिनी नायडू का मिल जाएगा, लेकिन भीकम जी कामा का नाम उसमें कहीं टेक्स्ट बुक्स के अंदर दिखाई नहीं देगा।
भीकाजी पटेल 1861 में बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में एक समृद्ध पारसी परिवार में पैदा हुई। 1885 में उनकी शादी जाने माने व्यापारी रुस्तम जी कामा से हुई, पर ब्रितानी हुकूमत को लेकर दोनों के विचार बहुत अलग थे। रुस्तम जी कामा ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे और भीकाजी एक मुखर राष्ट्रवादी। 1896 में बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैली और वहां मदद के लिए काम करते करते भीकाजी कामा खुद बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए वो 1902 में लंदन गईं और उसी दौरान क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिली। प्रोफेसर कपिल कुमार,
ये जो एक भ्रम फैलाया गया है 47 के बाद में कि पूरा नेशनल मूवमेंट जो है वो सिर्फ कांग्रेस ने ही चलाया और किसी ने नहीं कुछ किया, सब पैराफरी पे थे, तो इसका एक ग्लोबल डायमेंशन है, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे भीकम जी कामा हो, इसी तरीके से जो बाहर की सपोर्ट है, जो INA का रोल है, इन सबको लगातार मार्जिनलाइज किया जाता है इंडियन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स के अंदर।
भीकाजी कामा का लोकप्रिय नारा था, भारत आजाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। 30 साल से ज्यादा तक भीकाजी कामा ने यूरोप और अमेरिका में VD सावरकर, MPT आचार्य और हरदयाल समेत कई क्रांतिकारियों के साथ काम किया और अपने भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए अपने देश के आजादी के हक की मांग बुलंद की। आखिरकार 1935 में उन्हें वतन लौटने की इजाजत मिली, पर बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 1936 में उनकी मौत हो गई। पीछे रह गया भारत का झंडा फहराने का उनका साहसी इतिहास।
मैडम भीकाजी कामा को याद कर रही थी दिव्या आर्य। और अब कार्यक्रम में समय बचा नहीं है, आज स्टूडियो संभाला है अजीत सारथी ने, समाचार आपको हम सुनवा नहीं पा रहे हैं इसी वजह से, और मानसी दास के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।